शांति। राजयोग का सही अर्थ है आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ संबंध अथवा मिलन। इस मिलन द्वारा आत्मा को परमात्मा से सर्व प्रकार के गुणों और शक्तियों की प्राप्ति होती है। आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद राजयोगी को यह जानना अति आवश्यक होगा कि परमात्मा कौन है, जिसके साथ योगी आत्मा को योग लगाना है या संबंध जोड़ना है, वो ईश्वर आखिर है कौन। आज प्रत्येक व्यक्ति की यही शिकायत है कि ईश्वर का ध्यान करते समय उसका मन भटकता रहता है या एकाग्र नहीं हो पाता है। इस तरह की शिकायत मनुष्य के साथ योग लगाने की बात में कभी नहीं होती है। कोई भी पत्नी ये शिकायत नहीं करेगी कि जब वह अपने पति को याद करती है तब उसका मन भटकता रहता है। कोई भी बच्चा यह कभी नहीं कहेगा कि वह अपने पिता में अपना मन एकाग्र नहीं कर सकता है। तब फिर यह शिकायत परमात्मा के लिए क्यों है? एक तरफ परमात्मा को माता पिता कहकर याद किया जाता है, उनके साथ सर्व संबंधों का भी वर्णन किया जाता है, जैसे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह परमात्मा की ही तो महिमा में गाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ फिर यह भी शिकायत बनी रहती है कि ईश्वर में मन नहीं लगता है। इसका मूल कारण यही है कि परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की पूरी अनुभूति नहीं है। एक पत्नी को अपने पति का पूरा परिचय है या बच्चे को अपने पिता की पूरी पहचान है, इसलिए उसमें मन टिकाना सहज हो जाता है। लेकिन परमात्मा के विषय में मनुष्य बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। आज परमात्मा के संबंध में अनेक मंतव्य और विश्वास प्रचलित हैं, जो प्रायः एक दो के विरोधी ही हैं। इसी कारण मनुष्य समझ नहीं पाता है कि आखिर परमात्मा कौन है। यही कारण है कि कई उसके अस्तित्व को ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए नास्तिक बन जाते हैं, या फिर इतनी अंधश्रद्धा रख लेते हैं, समझते हैं बस जैसे बड़े कहते आए हैं वैसे ही हमें करना है। लेकिन राजयोग हमें सिखाता है कि न अंधविश्वास में अति फंसो और न ही नास्तिकता लाओ, लेकिन भावना और विवेक दोनों का बैलेंस रख करके ईश्वर के सत्य स्वरूप को पहचान करके उनके साथ संबंध जोड़ो। आज ईश्वर के बारे में इतनी मान्यताएं हैं, कोई परमात्मा को नाम रूप से न्यारा मानते हैं तो कोई इस अभिप्राय के हैं कि सभी ईश्वर के नाम रूप हैं, कोई श्री कृष्ण श्री राम महात्मा बुद्ध ईसा मसीह को परमात्मा का अवतार मानते हैं, तो कोई यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं कि परमात्मा का कभी अवतार होता भी है, कोई आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं तो कोई आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं और कोई आत्मा का सदा परमात्मा से अलग अस्तित्व मानते हैं, कोई तो जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य मानते हैं, तो कोई जगत के अंदर ही प्रकृति को ही ईश्वर का स्वरूप समझते हैं, कोई तो स्वयं को ईश्वर के आगे नीच दास या पापी सिद्ध करते हैं और कोई फिर स्वयं को ही शिवोहम या भगवान कहला करके अपनी ही पूजा कराते हैं, कोई परमात्मा को हृदय में मानते हैं तो कोई कण कण में व्यापक समझते हैं और कोई उसका स्थान सातवां आसमान बताते हैं। अब आखिर परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ है? उपरोक्त अनेक मंतव्यों का कारण है कि परमात्मा कोई स्थूल वस्तु नहीं है जिसे चरम चक्षुओं से देखा जा सके या स्थूल इंद्रियों से अनुभव किया जा सके। चैतन्य परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो बुद्धि के द्वारा ही जाना अथवा अनुभव किया जा सकता है। प्राचीन ऋषि मुनि परमात्मा की हर प्रकार से खोज करने के पश्चात इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर को पहचानना मनुष्य के वश की बात नहीं। ईश्वर के बारे में नेति नेति कहकर छोड़ दिया। लेकिन ऐसे छोड़ना भी तो नहीं चाहिए, आखिर परमात्मा हमारा पिता है और हर बच्चे को अपने पिता को पहचानना एक अनिवार्य हो जाता है। तो यह तो सर्वभौमिक रूप से अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि परमात्मा एक है और वो सत्य है, चैतन्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा का परिचय भी केवल एक ही हो सकता है, क्योंकि सत्य की पहचान एक ही होती है। अब उस ईश्वर की सत्य पहचान क्या होगी? जिस प्रकार किसी डॉक्टर की पहचान उसके ज्ञान, अनुभव, गुणों तथा कर्तव्यों के आधार पर ही की जा सकती है, इसी प्रकार परमात्मा का सही स्वरूप 5 बातों के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले परमात्मा उसे कहा जाएगा जो सर्वमान्य हो, यानी जिसे सभी धर्मों की आत्माएं स्वीकार करें, क्योंकि वह सर्व धर्मों की आत्माओं के परम पिता हैं। उसे अलग अलग भाषाओं और धर्मों में अलग अलग नामों से याद किया जाता है, जैसे कि परमेश्वर, ईश्वर, ओंकार, अल्लाह, खुदा, गॉड, नूर इत्यादि इत्यादि, लेकिन है तो वो एक ही ना। इसी प्रकार परमात्मा उसे ही कहेंगे जो सर्वोच्च हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम या सर्वोपरि या परम हो, अर्थात जिसके ऊपर कोई भी हस्ती न हो, न कोई शक्ति हो, न कोई संबंध हो। परमात्मा का कोई माता पिता, शिक्षक, गुरु या रक्षक नहीं है, बल्कि वे ही सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु और परम रक्षक है। इसलिए उसकी महिमा में ही गाया जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवन। तो जिसका नाम, धाम, गुण, कर्तव्य सबसे ऊंचे हो, वही परमात्मा है। तीसरी बात, परमात्मा उसे ही कहेंगे जो सबसे न्यारे हो। परमात्मा जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख सबसे न्यारे हैं। परमात्मा इस प्रकृति के परिवर्तन क्रिया अर्थात सतो, रजो, तमो इनसे भी न्यारे हैं। वह सर्व प्राकृतिक बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए वह सर्व से न्यारे और सर्व के प्यारे माने गए हैं। ईश्वर से ऊंचा तो कोई नहीं है, लेकिन उनके समान भी तो कोई नहीं है। और चौथी बात, परमात्मा उसे ही कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, अर्थात जो सब कुछ जानता हो। किसी भी संदर्भ में जब कोई बात व्यक्ति की समझ में नहीं आती है, तो वह ईश्वर को याद कर अवश्य कहेगा, भगवान जाने, अल्लाह जाने, गॉड नोज। यानी परमात्मा से कोई भी बात अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, वह त्रिकालदर्शी है, वह ज्ञान का सागर है, वह सब कुछ जानता है। पांचवी बात, परमात्मा उसे ही कहेंगे जो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का भंडार अथवा दाता हो। परमात्मा कभी भी किसी से लेता नहीं है, परंतु सागर या सूर्य के समान अपने गुणों और शक्तियों को देता ही रहता है। उसी के लिए ही गाया गया है, देने वाला जब भी देता, छप्पड़ फाड़ के देता। अब कोई भी साकार देहधारी व्यक्ति को परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि साकार व्यक्ति के साथ ये पांचों बातें नहीं घट सकती। साकार व्यक्ति कभी भी सर्वमान्य नहीं हो सकता, कभी भी सर्व धर्म की आत्माएं साकार देहधारी को अपना सर्वस्व मान नहीं सकती। साकार देहधारी के माता पिता, शिक्षक, गुरु, रक्षक अवश्य होंगे, इसलिए उसे सर्वोच्च भी नहीं कह सकते। साकार व्यक्ति सबसे न्यारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि साकार के साथ जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख ये सब संलग्न हैं। साकार सर्व का ज्ञाता तथा दाता भी नहीं बन सकता है, वह तो और ही ईश्वर से ज्ञान, सुख, शांति और शक्ति की भीख मांगता है। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि कोई भी साकारी देहधारी व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता। अब हम परमात्मा के संदर्भ में उस सत्य ज्ञान का उल्लेख करने जा रहे हैं जो स्वयं परमात्मा ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दिया है। परमात्मा अपना परिचय स्वयं देते हैं कि मैं निराकार हूं। बहुत से लोग निराकार शब्द का यह गलत अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी रूप नहीं है। यदि परमात्मा का कोई भी रूप न होता तो राजयोग बिल्कुल ही निरर्थक हो जाता है, क्योंकि तब परमात्मा को याद करना असंभव हो जाएगा। हम किसे याद करें और कहाँ याद करें? प्रत्येक वह वस्तु जिसका अस्तित्व है उसका रूप या आकार भी अवश्य ही होता है, फिर चाहे वह रूप कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। हाँ, गुणों और विशेषताओं का कोई रूप नहीं है, पर जिस विभूति या अस्तित्व में ये गुण या विशेषताएं हैं उसका आकार अवश्य होता है। उदाहरण के तौर पर सुगंध आकारहीन है, पर जिस पुष्प या पदार्थ से यह सुगंध निकलती है उसका आकार अवश्य है। परमात्मा के गुण जैसे ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद आदि का तो कोई आकार नहीं है, लेकिन परमात्मा गुणी है, इसलिए गुणी होने के कारण उनका अपना आकार अवश्य है। जिस प्रकार निर्गुण शब्द सगुण शब्द की भेंट में प्रयोग किया जाता, इसी प्रकार निराकार भी साकार शब्द के भेंट में प्रयोग किया जाता। परमात्मा साकार देहधारी मनुष्य या आकारी देवताएं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उनसे न्यारे हैं, इसलिए उनकी भेंट में निराकार कही गई हैं। परमात्मा शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनते हैं, परम और आत्मा। परमात्मा भी एक अति सूक्ष्म आत्मा ही है, यद्यपि वह अन्य सभी आत्माओं की तुलना में अपने गुणों और कर्तव्यों में परम आत्मा है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आत्मा कर्म और फल का अनुभव करती, लेकिन परमात्मा अकर्ता और अभोक्ता है। वास्तव में परमात्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु है। रूप में वे बिंदु है, लेकिन गुणों में वे सिंधु है। तो रूप में ज्योतिर्बिंदु और गुणों में सिंधु परमात्मा को जब हम पहचान जाते हैं, हम अपने मन को उस परमात्मा में टिका सकते हैं। लेकिन रूप के साथ साथ परमात्मा का सत्य नाम क्या है? वैसे तो कई मानते हैं कि ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जिस समय हमने ये समझा कि परमात्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है तो नाम भी अवश्य होगा। हाँ, परमात्मा का नाम गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है। मनुष्य अपना नाम अपने शरीर पर रखवाते हैं, लेकिन वे नाम संज्ञावाचक होते हैं, और परमात्मा का नाम अपने गुणों और कर्तव्यों के आधार पर होने के कारण वह गुण और कर्तव्यवाचक नाम कहा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का गुण है सर्व आत्माओं का कल्याण करना, और सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनका गुण और कर्तव्यवाचक नाम है सदा शिव, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। शिव अर्थात बिंदु, सत चित आनंद स्वरूप, और सत्यम शिवम सुंदरम, उसी सत्य स्वरूप सदा सुंदर कल्याणकारी पिता परमात्मा की ही महिमा है। शिव पवित्रता तथा शांति का भी सूचक है। परमात्मा शिव को शंभू अथवा स्वयंभू भी कहते हैं, क्योंकि उनके कोई माता पिता या रचयिता नहीं है। उन्हें सदा शिव भोलानाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह सदा ही हम आत्माओं से प्रसन्न होने वाला कल्याणकारी पिता परमात्मा है। अब निराकार परमात्मा का ज्योति स्वरूप आकार सर्वमान्य है, क्योंकि सारे संसार में इसी का यादगार अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पाया जाता है। भारत में ज्योतिर्लिंगम प्रतिमा, उस ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव का यादगार चिन्ह है, जिसके मंदिर जगह जगह पाए गए हैं। अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, महाकालेश्वर, मुक्तेश्वर, रामेश्वर, ओंकारेश्वर, पापकटेश्वर, गोपेश्वर इत्यादि, ये सब परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्यों और गुणों का सूचक है। भारत के 12 प्रमुख शिव मंदिरों को ज्योतिर्लिंगम मठ कहा गया है, जिससे सिद्ध है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। यहाँ लिंग का अर्थ चिन्ह से है। शिवलिंग परमात्मा का ही स्वरूप का चिन्ह है। मुसलमान भाई भी मक्का में जब हज यात्रा करने जाते हैं तो एक काला अंगुष्ठाकार पत्थर, जिसे वे संगे अस्वद कहते हैं या काबा का पत्थर कहते हैं, उस पत्थर को अति श्रद्धा से मानते हैं और समझते हैं कि तभी उनकी हज यात्रा सफल होती है। उनका भी यही विश्वास है कि अल्लाह एक रूहानी रूह है या नूरानी नूर है। यहूदियों की भी मान्यता है कि मूसा को सिनाई पर्वत पर परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार हुआ था। वे परमात्मा को जिहोवा कहते हैं। सभी धर्म स्थापकों ने एक निराकार की ही महिमा की है। ईसा मसीह ने भी कहा कि परमात्मा एक ज्योति है, गॉड इज लाइट। गुरु नानक ने उन्हें ओंकार कहा। विभिन्न योगियों को भी यही ज्योति प्रतीत हुई। आज तक मंदिरों में दीपक तथा गिरजाघरों में मोमबत्ती जलाने की प्रथा है, क्योंकि प्रकाश की लौ परमात्मा के स्वरूप का प्रतीक है। जापान में एक पंथ है जिसके अनुयायी एक अंगुष्ठाकार पत्थर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे वे चिंकोन सेकी कहते हैं, अर्थात शांति का पत्थर। परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। वे देवताओं और धर्म स्थापकों के भी पिता हैं, क्योंकि वे शाश्वत, सदा संपन्न और अपरिवर्तनशील हैं। लेकिन अब यह प्रश्न उत्पन्न होता कि परमात्मा कहाँ है। आज हम यही देखते हैं, किसी से भी आप पूछिए परमात्मा कहाँ है, तो यही उत्तर मिलेगा, परमात्मा तो सर्वत्र है। हाँ, आपको यह जानकारी यहाँ दी जा रही है कि सर्वत्र अथवा सर्वव्यापी, ये भावना अवश्य सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके आधार पर आत्मा अनुभव करती है कि वह सदा ही परमात्मा के साथ है। लेकिन अगर हम सैद्धांतिक तौर पर जानना चाहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, तो परमात्मा ने अपने धाम की भी पहचान कराई है कि जहाँ आत्माओं का धाम है वहाँ ही परमात्मा का भी धाम है। कई अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा का स्वरूप समझ लेते, लेकिन परमात्मा ने हमें बताया है कि अखंड ज्योति ब्रह्म महतत्व, ये तो परमात्मा का अविनाशी धाम है। जैसे शरीर और आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं, वैसे ब्रह्म और परमात्मा शिव ये भी अलग अलग हैं। परमात्मा शिव चैतन्य है, जो उस अखंड ज्योतिमय ब्रह्म महतत्व में निवास करते हैं, और हम आत्माएं भी उसी घर में निवास करती है। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं, उस समय हम अपने मन को उस परम पिता परमात्मा में ले जाते हैं, उसी अखंड ज्योतिमय ब्रह्म महतत्व घर में, जहां हम आत्माएं मुक्ति का अनुभव करती है, जहां हम आत्माएं इस देह और देह की दुनिया से अति दूर हैं, देह के बंधनों से पार हैं, जहां आत्मा अति निरसंकल्पता की अनुभूति करती है। अब उस धाम में अपने मन बुद्धि को ले जाती है, तो सबसे पहले हम परमात्मा के सत्य स्वरूप को फिर से समझें। संक्षेप में परमात्मा का परिचय इस प्रकार है, उनका नाम कल्याणकारी शिव है, उनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उनका धाम परम धाम, शांति धाम या मुक्ति धाम है। और जब हम परमात्मा की महिमा गाते हैं तो उनकी महिमा सागर से भेंट करते हैं, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, पतित पावन आदि आदि। और सर्व आत्माओं के कल्याणकारी है वे सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमात्मा शिव। तो जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को आत्मनिश्चय करना होगा। परमात्मा निराकार है तो मैं आत्मा भी निराकार हूँ। परमात्मा सर्व गुणों का सागर है तो मैं आत्मा भी सर्व गुणों की स्वरूप हूँ। परमात्मा परम धाम निवासी है तो मैं आत्मा भी उसी परम धाम की ही निवासी हूँ। तो जब हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं तब हम अपने मन को इस देह और देह की दुनिया से बहुत दूर ले जा सकते हैं, अपने सच्चे धाम में अपने मन को टिका सकते हैं। तो योग लगाने के लिए हमें और कुछ भी नहीं करना है। अवश्य स्थान हमारा स्वच्छ हो, वातावरण शुद्ध हो, अन्न शुद्ध हो, सत्संग के महत्व को हम समझें। और सबसे बड़ी बात है कि राजयोग का अभ्यास करने के लिए अगर सवेरे 4 बजे उठकर हम इस अभ्यास को करेंगे तो उसी समय वातावरण शुद्ध होने के कारण हम अपने मन के संकल्पों को भी एकाग्र कर सकते हैं और सहज ही ईश्वर में अपना मन लगा सकते हैं। अगर हो सके तो लाल प्रकाश का वातावरण बनाया जाए, क्योंकि यह लाल प्रकाश हमारे परमधाम की निशानी है, जहाँ सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है, अखंड ज्योतिमय दिव्य प्रकाश। जब हम ऐसे वातावरण में बैठते हैं तो मन को परमात्मा में लगाना सहज हो जाता है। अब कैसे आत्मा परमात्मा से सर्व संबंध जोड़े वह फिर अगला विषय लिया जाएगा, लेकिन अभी हम सब उस परमात्मा की दिव्य स्मृति में बैठेंगे और मन के अंदर कुछ चिंतन लाएंगे, क्योंकि मन को संकल्प अवश्य देना है, मन को दमन नहीं करना है, मन को छोड़ भी नहीं देना है, लेकिन मन को शुद्ध संकल्प देकर उसे पवित्र बनाना है, ताकि हम मन मना भव हो सके, अर्थात हम अपने मन को ईश्वर में लगा सके। तो इस प्रकार के कुछ विचार लाकर अपने मन को परमात्मा में एकाग्र कीजिए। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। रूप में ज्योतिर्बिंदु और गुणों में सिंधु के समान मेरे कल्याणकारी शिव पिता, जो सर्व गुणों के सागर हैं, सर्व शक्तियों के भंडार हैं। उस पिता परमात्मा शिव की मैं आत्मा संतान हूं और सर्व गुणों और शक्तियों की अधिकारी हूं। शिव पिता शांति के सागर हैं, मैं आत्मा उसकी संतान शांत स्वरूप हूं। शांति धाम की निवासी हूं, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। असीम प्रकाश ही प्रकाश है, जहां मैं आत्मा अपने असली स्वधर्म का अनुभव कर रही हूं। मेरे प्यारे शिव पिता, आनंद के सागर हैं, मैं आत्मा उसकी संतान आनंद स्वरूप हूं। शिव पिता पवित्रता के सागर है, मैं आत्मा उसकी संतान पवित्र स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं। परमात्मा के समीप आकर मैं परमात्मा के सर्व गुणों का अनुभव कर रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। राजयोग शिविर का चौथा विषय है राजयोग का आधार और विधि। अगर हम राजयोग का सही परिचय लें तो राजयोग अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति, स्मृति कहिए अथवा याद कहिए, जो मन का काम है और मन सदा ही कुछ न कुछ सोचता रहता है, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे वैभव या कोई घटना या परिस्थिति, किसी भी विषय में मन सदा ही सोचता रहता है। लेकिन जब मन को हम परमात्मा में टिकाते हैं तब हम कह सकते हैं कि मन हमारा ईश्वर के साथ लगने के कारण हम सच्चे राजयोगी बन जाते हैं। वैसे तो हम सब भगवान को याद करते हैं, जब जब दुख की घड़ी आती है ईश्वर की याद स्वतः आती है, लेकिन फिर भी हम जब यह शिकायत करते हैं कि मन ईश्वर में नहीं लगता, इसका मूल कारण ही है कि ईश्वर का सत्य परिचय नहीं है। तो जरूर मन को ईश्वर में लगाने के लिए कुछ आधार चाहिए, कुछ इसकी विधि चाहिए। वैसे आज हम दुनिया में देखते हैं करोड़ों इंसान हैं, लेकिन मन कोई सदा सबके विषय में नहीं सोचता है। मन किन व्यक्तियों के विषय में सोचता है, उसका आधार क्या है? तो हम कह सकते हैं कि मूल रूप से चार आधार है जहां मन जा सकता है। सबसे पहला आधार है परिचय। जिसका परिचय होगा उसके विषय में मन अवश्य सोचेगा। परिचय के बिना मन कैसे सोचे? परिचय के बाद दूसरा आधार है संबंध। जहां संबंध है वहां मन अपने आप चला जाता है। जैसे पति पत्नी का संबंध है तो पत्नी अपने पति को अवश्य याद करती है क्योंकि वहां संबंध है। तो संबंध एक बहुत बड़ा आधार है मन को कहीं भी जाने लिए। तीसरा आधार है स्नेह। जहां स्नेह है, प्यार है, वहां भी मन अपने आप चला जाता है। और चौथा आधार है प्राप्ति। जहां से कुछ हमें मिलता है वहां हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती मन को लगाने में, परंतु मन स्वाभाविक रीति से चला जाता है। तो ये मूल रूप से चार आधार है जहां मन अपने आप चला जाता है, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। अब अगर हम ये चारों आधार परमात्मा से लगाते हैं तो हम ये कभी भी शिकायत नहीं करेंगे कि मन ईश्वर में नहीं लगता। सबसे पहले हमारे पास परमात्मा का सही परिचय होना चाहिए। उसके बाद जो आत्मा का परमात्मा के साथ सच्चा संबंध है उसकी पूरी पहचान होनी चाहिए। तत्पश्चात ईश्वर से सच्ची लगन या ईश्वर से सच्चा प्रेम चाहिए। और फिर हमें यह भी जानकारी चाहिए कि आखिर परमात्मा से हमें प्राप्ति क्या होती है, हम क्यों परमात्मा को याद करें। अब इन चारों बातों पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आपको पूर्व विषय में यह जानकारी मिली कि परमात्मा कौन है। परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है, लेकिन परमात्मा का दिव्य नाम कल्याणकारी शिव है। परमात्मा का दिव्य स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है। परमात्मा सर्व आत्माओं के कल्याणकारी है, इसलिए उनका गुण और कर्तव्य वाचक नाम है शिव। और अगर हम अति स्नेह से परमात्मा को याद करते हैं तब हम स्नेह से कहते हैं शिव बाबा, बाबा माना पिता। तो परमात्मा का हमारे पास अगर पूर्ण परिचय हो, परमात्मा ज्योति बिंदु रूप है, सदा शिव है, कल्याणकारी है, परम धाम के निवासी है, हम आत्माओं के सच्चे परम पिता हैं, तो इस पहचान के आधार से हम अपने मन को परमात्मा में लगाना आरंभ कर लेते हैं। उसके बाद सर्व संबंधों का रस चाहिए ईश्वर के साथ। वैसे तो हम अवश्य गायन करते हैं कि परमात्मा माता पिता बंधु सखा स्वामी आदि है, लेकिन इन संबंधों का रस क्यों नहीं अनुभव होता। आज हम ईश्वर के साथ सर्व संबंध का वर्णन करते हुए भी यही शिकायत करते हैं कि मन भटकता है। इसका मूल कारण ही है कि ईश्वर से संबंध जोड़ते समय अवश्य कोई ऐसी कमी रह गई है जिसको हम राजयोग में भर सकते हैं और उस सच्चे संबंध का अनुभव कर सकते हैं। तो वह भी आपको बताएंगे कि कैसे हम परमात्मा से संबंध जोड़ें। तीसरी बात है, परमात्मा से सच्ची लगन लगाने लिए उनके प्रति सच्चा स्नेह चाहिए। वैसे तो देखा गया है आज की दुनिया में ईश्वर से स्नेह तो है परंतु स्वार्थी प्यार है। आज हम ईश्वर की महिमा गा लेते हैं, लेकिन महिमा गाने के बाद फिर कुछ न कुछ ईश्वर से मांग लेते हैं। और अनुभव कहता है कि जब हम कोई चीज़ मांग लेते हैं वह सच्चा प्यार नहीं है। जिसके साथ प्यार होता है उनसे कुछ भी मांगा नहीं जाता, वो अपने आप देता है। और ईश्वर तो है ही दाता। परमात्मा की महिमा में हम गाते हैं कि वह सर्व गुणों का सागर है, भंडार है, देने वाला जब भी देता छप्पड़ उखाड़ के देता। परमात्मा दाता है, उनके लिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम जब उनसे मांगेंगे तभी प्राप्ति होगी। और ही कहा जाता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। तो ईश्वर से अगर हम मांगते रहते हैं तो देखा जाता है भीख भी नहीं मिलती। लेकिन राजयोग हमें कहता है कि परमात्मा से मांगो मत, आप तो परमात्मा के सर्व गुणों के अधिकारी हो। वास्तव में जहाँ स्नेह है वहाँ अधिकार अवश्य है, लेकिन जब हम मांग लेते हैं तो वह स्नेह भी समाप्त हो जाता है, अधिकार भी समाप्त हो जाता है। परमात्मा के हम बच्चे हैं, बच्चे अर्थात अधिकारी, हम भिखारी नहीं हैं। और अगर भिखारी बनके भी ईश्वर से मांगेंगे तो कितनी प्राप्ति होगी, लेकिन अगर अधिकारी बन करके लेंगे तो सर्व प्राप्ति होगी। वास्तव में परमात्मा के पास जो कुछ है वो सब हमारे लिए ही तो है। आज हम ईश्वर की इतनी महिमा गाते हैं, अवश्य परमात्मा ने कभी तो हमें सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, इन सब गुणों का अनुभव करवाया है, तब तो हम उनकी याद में उनकी इतनी महिमा गाते हैं। तो राजयोग वह तरीका है, वह विधि है जिसके द्वारा परमात्मा के सर्व गुणों को हम अपने अंदर अधिकार के रूप में ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ विधि चाहिए। जिस प्रकार अगर हम दो तारों को जोड़ना चाहते हैं तो रबर को हटाना पड़ता है और कॉपर वायर को जोड़ते हैं तब करंट पास होती है। जहाँ समानता है वहाँ ही योग है। जैसे हम अपने रेडियो को ऑन करते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि जो भी स्टेशन हम चाहते हैं केवल रेडियो ऑन करने से ही मिल जाएगी, नहीं, उसी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पर अपने रेडियो को सेट करना पड़ता है। तो समानता के आधार पर ही योग हो सकता। अब हम परमात्मा को याद तो करते हैं लेकिन कोई समानता तो है ही नहीं। हम समझते हैं परमात्मा निराकार है और मैं साकार हूँ, मनुष्य हूँ, देहधारी हूँ, फला नाम वाला व्यक्ति हूँ। तो इस भावना के आधार से कभी भी ईश्वर से योग नहीं लग सकता। ईश्वर के साथ योग लगाने के लिए समानता चाहिए। अगर परमात्मा निराकार है तो मैं आत्मा भी निराकार हूँ। साकार बनकर के परमात्मा से हम कभी भी योग युक्त नहीं हो सकते हैं। वो निराकार और मैं साकार, अगर साकार समझूंगी तो साकार देहधारी व्यक्ति ही याद आएंगे। अगर खुद को निराकार समझूंगी तब ही निराकार परमात्मा की स्मृति आएगी। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम कहाँ तक अपने देह भान को अपने से दूर करते रहते हैं। अंदर में यह संकल्प करते रहना है कि मैं इस देह से न्यारी एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ, एक चेतन सत्ता हूँ। यह देह तो विनाशी है, यह देह मेरा एक वस्त्र है। मैं आत्मा हूँ, इस देह की इंद्रियों का मालिक हूँ। इस प्रकार से हम देह भान से परे हो सकते हैं और अपने मन को ईश्वर में टिका सकते हैं। तो सबसे पहले है रूप की समानता। फिर हम देखें परमात्मा की महिमा गाते गाते हम कहते हैं तुम सर्व गुणों के सागर हो, परंतु खुद को हम मूर्ख, पापी, कामी, कपटी, विकारी सिद्ध करते हैं और फिर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो सोचने की बात है, अगर माता पिता इतने श्रेष्ठ हैं, सर्व गुणों के सागर हैं, तो अवश्य उनके बच्चे भी इतने ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर किसी के पिता राजा है तो अवश्य उनका पुत्र भी राजकुमार है। तो अगर परमात्मा सर्व गुणों के सागर हैं तो मैं आत्मा अशांत, पापी, दुखी नहीं हूँ। लेकिन जैसे परमात्मा के गुण हैं वैसे मुझ आत्मा के भी गुण हैं। हाँ, अंतर यही है कि परमात्मा के गुण सागर के समान हैं और आत्मा के गुण गागर के समान हैं। तो जब गागर खाली होती अवश्य सागर से भरने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा बिल्कुल गुणहीन हूँ, नहीं, हर आत्मा का असली गुण भी वैसा ही है जैसे परमात्मा का गुण है। परमात्मा शांति के सागर हैं तो आत्मा शांति स्वरूप है, परमात्मा प्रेम के सागर हैं तो आत्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा आनंद के सागर हैं तो आत्मा आनंद स्वरूप है। तो गुणों में भी समानता है। जितना जितना गुणों की समानता का हम चिंतन करते जाएंगे उतना उतना हम परमात्मा के शिव बाबा के समीप जाते जाएंगे, क्योंकि समानता ही समीपता लाती है। और जितना समीप होते जाएंगे उतना उतना परमात्मा के गुणों में भी हम समान होते जाएंगे। समानता समीपता को लाती और समीपता समानता को लाती है। तीसरी भी एक बहुत बड़ी समानता है जिसको आज तक हम नहीं पहचान पाए, और वह है जो परमात्मा का धाम है वह मुझ आत्मा का भी धाम है। अगर हम कहें कि परमात्मा तो परम धाम के वासी है और हम इस संसार के एक प्राणी हैं, तो कभी भी हमारा योग ईश्वर के साथ नहीं लग सकता है। राजयोग हमें सिखाता है कि हम आत्माएं भी इस संसार में पाठधारी हैं, एक्टर्स हैं, हम यहाँ मेहमान हैं, हम यहाँ केवल अभिनय करने आए हैं, हमारा वास्तविक घर तो वही शांति धाम, परम धाम, मूल वतन आदि आदि है। अब जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि हम उसी धाम के वासी हैं जहाँ परमात्मा भी निवास करते हैं, तो एक सेकेंड में हम अपने मन को उस पावन धाम में ले जा सकते हैं। तो स्वरूप की समानता, गुणों की समानता, धाम की समानता, इस समानता के आधार पर हम परमात्मा के नज़दीक आते हैं। परमात्मा से कुछ भी मांगते नहीं हैं, लेकिन अधिकारी बन करके इन गुणों का अधिकार हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं हमें अपने संकल्पों को दमन नहीं करना है, न ही हमें मन को छोड़ देना है या छूट दे देनी है और जो भी संकल्प आए आने देने हैं, नहीं, मन को हमें चिंतन देना है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को समझाया जाता है वैसे बच्चे रूपी मन को हमें समझाना है, ज्ञान देना है, बुद्धि अर्थात समझ। तो जब हमको ये ज्ञान मिल जाता है कि हम एक आत्मा हैं, उस परमात्मा की संतान हैं, परम धाम के निवासी है, सर्व गुणों के सागर पिता शिव की संतान, मैं आत्मा भी सर्व गुणों की स्वरूप हूँ, इस समझ के आधार पर बुद्धि मन को यह समझ देती रहती है, जिसको हम कहते हैं फूड फॉर थॉट। और जिस प्रकार हम जैसा भोजन खाएंगे उसी अनुसार शरीर की शक्ति बनती है, वैसे ही जैसे जैसे हम अपने मन को ये शुद्ध संकल्प देते रहेंगे वैसे वैसे मन भी शक्तिशाली बनता जाएगा और परमात्मा में लगन लगती जाएगी। उसके लिए कोई मंत्र का जाप नहीं है। वास्तव में आज अगर हम केवल मंत्र का जाप देते हैं तो परमात्मा से योग लगने के बजाय अनुभव कहता है कि गिनती के साथ योग हो जाता है, क्योंकि हमें पीरियड मिलता है या हमें गिनती मिलती है कि इतना समय आपको याद करना है। तो ईश्वर के साथ तो योग हुआ ही नहीं। तो राजयोग कहता है कि अगर हमको परमात्मा से योग चाहिए तो कोई गिनती की लिमिट की आवश्यकता नहीं। हम तो हर कर्म करते परमात्मा के साथ सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में मंत्र का भी अर्थ है। मंत्र को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनते हैं, मन और त्र, यानी वह विधि, वह तरीका जिससे मन को तृप्ति मिले, संतुष्टता अनुभव हो, मन भरपूरता की अनुभूति करे। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन को इस प्रकार के शुद्ध संकल्प देते रहते हैं। ये है राजयोग की प्रथम अवस्था, जिसको हम कहते हैं शुद्ध विचारों का मनन चिंतन। वैसे तो मन सोचता ही रहता है कुछ न कुछ। अगर हम मन को शुद्ध विचार नहीं देंगे तो मन अशुद्ध विचार करेगा, या तो साधारण विचार करेगा या तो व्यर्थ विचार करेगा। लेकिन अगर हम मन को शुद्ध विचार करने का एक संकल्प देते रहते हैं तो इन्हीं शुद्ध संकल्पों में मन रमन करता रहेगा और मन शक्तिशाली बनता जाएगा। तो पहली अवस्था राजयोग में एक संघर्ष की अवस्था अवश्य है, क्योंकि अब तक मन को केवल साधारण व्यर्थ या अशुद्ध संकल्प करने का ही ज्ञान है। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करना आरंभ कर लेते हैं और मन को शुद्ध संकल्प देने की कोशिश करते हैं तो आदत से मजबूर होकर मन अनेक प्रकार के अन्य संकल्प भी लाता है। लेकिन धीरे धीरे अनुभव कहता है कि ये अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाते हैं और मन शुद्ध संकल्पों में ही रमण करता रहता। फिर दूसरी अवस्था है परमात्मा से रूह रिहान। हम ईश्वर से अंदर ही अंदर दिल की बातें करते हैं, मांगते कुछ नहीं है, न ही हम अपने आप को नीच, पापी, कपटी, कामी आदि कहते हैं, क्योंकि आत्मा तो अपने असली स्वभाव में पवित्र, शांत, प्रेम, सुख शांति की स्वरूप है, न कि कामी, पापी या कपटी है। तो जब हम परमात्मा की संतान स्वयं को समझते हैं तो जो उनके गुण हैं वे मेरे भी गुण हैं। तो अपने आप को नीच पापी कहलाने की बजाय हम खुद को उन्हीं गुणों का स्वरूप समझ करके परमात्मा के समीप आते हैं। जैसे हम शिव बाबा को कहते, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांति स्वरूप हूँ। ऐसे नहीं कि आप शांति के सागर हो तो मुझे आप शांति दीजिए, नहीं, शांति कोई मांगने की चीज़ नहीं है और न ही परमात्मा हमें शांति देगा हमारे मांगने से। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, शांति तो आत्मा का स्वलक्षण है। हम कहते ही हैं ओम शांति शांति शांति, अर्थात आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का सच्चा धाम शांति का धाम है और आत्मा के सच्चे पिता शांति के सागर हैं। तो जिसका स्वयं का धर्म शांति, जिसका पिता शांति का सागर, जिसका घर शांति का धाम, वह कभी भी अशांत नहीं हो सकता। तो परमात्मा को याद करते समय हम अपने गुणों को भी साथ साथ याद करते रहते और साथ साथ ईश्वर को हम शुक्रिया करते हैं। मांगते कुछ नहीं लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसका धन्यवाद करते हैं। जितना जितना धन्यवाद करते जाएंगे उतना उतना परमात्मा से प्रेम बढ़ता जाएगा, शिव बाबा के साथ लगन बढ़ती जाएगी। और जैसे शिव बाबा से इन संबंधों का अनुभव करते जाएंगे हम तीसरी अवस्था का अनुभव करते हैं जिसको कहते हैं अव्यक्त अवस्था, जिसमें व्यक्त के सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, देह का आकर्षण खत्म हो जाता है, इस देह की दुनिया की कोई भी बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक ऐसी एकाग्रता आ जाती है जिसमें मन एक एक गुण में अपने आप को लीन अनुभव करता जाता है। जैसे परमात्मा शांति का सागर है तो आत्मा अनुभव करती है कि जैसे वह शांति की बिंदु उस शांति के सागर में समाती जा रही है, भरपूर होती जा रही है। और इस स्थिति के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति का अनुभव होता है जिसको हम कहते हैं कर्मातीत अवस्था, अर्थात बीज रूप की अवस्था, जिसमें आत्मा अपने अंदर सर्व बंधनों से मुक्ति का अनुभव करती है, एक बीज बन जाती है, एक बिंदु बन जाती है। और जिस प्रकार सूर्य की किरणें अगर कॉन्वेक्स लेंस से फोकस हो तो फोकल पॉइंट पर कागज रखने से वहाँ कागज जलना आरंभ करता है, इसी प्रकार परमात्मा की याद में जब हम एक ऐसी स्थिति का अनुभव करते जिसमें आत्मा सर्व कर्म बंधनों से खुद को मुक्त महसूस करती है। इतनी एकाग्रता आ जाती है जो अनुभव होता है कि कितने जन्मों के पाप भस्म हो गए और आत्मा हल्की बन गई। और धीरे धीरे हम अनुभव करते जाते, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता जाता है। हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, स्मृति में, कृति में, हर प्रकार से एक परिवर्तन। और यही परिवर्तन राजयोग की सच्ची अनुभूति है, राजयोग की सही प्राप्ति है। यही तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो। जो हम पहले देह को देखते थे, अब हम आत्मा को देखना आरंभ करते हैं। जो पहले कभी कभी क्रोध आ जाता था, लेकिन अब हम जब स्वयं को शांति स्वरूप आत्मा निश्चय करते हैं, तो उसी वक्त महसूस होता है कि नहीं, मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे सबको शांति का दान देना है, सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करना है। इस प्रकार हम इन अवस्थाओं से गुजरकर अपने आप को एक ऐसा सुंदर जीवन में महसूस करते हैं जो अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने के एक पात्र बन जाते हैं। अभी हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। उसके लिए आप एक ऐसा स्थान चुन लीजिए जहां आप कुछ समय तक और सब बातों से अपने मन को हटा सकें, किसी भी प्रकार का बाह्य आकर्षण न हो। अगर सवेरे के समय आप करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रात्रि को वैसे भी आत्मा देह से न्यारी हो ही जाती है नींद में। तो जब हम सवेरे उठते हैं तो एकदम से अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प नहीं आते, इसलिए सवेरे का समय बहुत सुंदर है राजयोग के अभ्यास करने के लिए। तो शुद्ध स्थान को चुनिए, और कोई हठयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुखासन पर स्थित हो जाइए, जिस स्थिति में आप 15-20 मिनट बिगर हिले आप आराम से बैठ सके, उस स्थिति में अपने आप को बिठाइए और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। अपने अंदर खुशी का अनुभव कीजिए, एक नशे का अनुभव कीजिए। क्यों? क्योंकि आप उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से अपना संबंध जोड़ रहे हैं। आप उस ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम के सागर परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आप सच्ची कमाई कर रहे हैं, जो कमाई आत्मा के साथ चलने वाली है, जो अविनाशी कमाई है। वो कमाई तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन इस सच्ची कमाई को जब हम अनुभव करते, जो संस्कारों में भरती जाती, यह कमाई आत्मा के साथ चलने वाली कमाई है। तो उस नशे से, उस खुशी से बैठिए और इस प्रकार के चिंतन कीजिए अपने मन में। मन रूपी नेत्र द्वारा अपने सामने शिव बाबा को लाइए, ज्योति बिंदु स्वरूप, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ, और जो उनके गुण हैं वे मेरे भी गुण हैं। इस निश्चय के आधार से उन्हीं गुणों का स्वरूप बनते जाइए। शिव बाबा को देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम है वो, और मैं उसकी अजर अमर अविनाशी संतान हूँ। शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़िए, माता, पिता, बंधु, सखा, सब कुछ है शिव बाबा मेरे। ओम शांति।
हूँ।